अब अगला इशू, दो हो गए, पहला क्या आता है घरों में इजाजत लेकर आओ, दूसरा क्या आता है कि मर्द भी अपनी इज्जत का इस्तेमाल करें, औरतें खुद को छुपा के रखें, तीसरा क्या है कि वो लोग जो बिन ब्याहे बैठे उनकी शादियां कर दो। ये जिना के रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है कि फिर क्या करें, फिर शादी नहीं हो रही तो फिर गलत चीजें सोचते हैं। तो फरमाए तुम में से जो लोग अकेले हो, यानी मुजरद मीन के मर्द की बीवी नहीं है, बीवी का मर्द नहीं है, इसमें शादीशुदा भी आ सकते हैं, अनमेरिड भी आ सकते हैं, यानी जिनके साथ उनका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो साले हो इनके निकाह कर दो। अगर वो गरीब हो तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी करेगा, अल्लाह बड़ी वसत वाला और इल्म वाला है। और जो निकाह का मौका ना पाए फिर क्या करें, यानी बच्चों की शादियां कर, डोंट डिले मैरिजेस किसी वजह से, कोई रीजन आप बनाए, वो माँ है, बाप है, बच्चे हैं, जो भी है, एज सुन एज पॉसिबल शादी कर दे। हदीस में आता है कि तीन चीजों में जल्दी करो, जिसमें एक चीज क्या है कि जब किसी का साथी ना रहे तो उसके दूसरे निकाह में, बच्चा बच्ची जवान हो जाए उसकी शादी कर दो। फरमाए अगर वो कोई गुनाह करेगा तो उसका वबाल तुम पर पड़ेगा। आज आप देख लीजिए 18 साल से पहले आप लीगली मैरिज तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, फिर अपने आप को नापाक करेंगे ना। एक रिपोर्ट मैंने एक मौके पे पढ़ के सुनाई थी कि 20 ईयर्स की एज तक पहुंचने वाली एक वेस्टर्न लड़की 3-4 पार्टनर बदल चुकी होती है, टेस्ट कॉन्शियस हो गए। हदीस में आता है कि जायके चखने जवाकीन व जवाकात, रंग रंग के जायके चखने और चखने वालियों पर अल्लाह ने लानत की। पहले 12, 14, 16, 18 साल में एक मर्द के पल्ले डाल दिया जाता था, सोचा भी अभी नहीं होता था कि मेरा आइडियल क्या, मिल जाता था उसी से मोहब्बत हो जाती थी, जिंदगियां गुजर जाती थी। हमारी बड़ी सासें माएं नानियां, उन्होंने जिंदगियां ऐसी गुजार दी। आज जब पहले से आप टेस्ट कॉन्शियस हैं, आज क्यों रिश्ते नहीं होते, पहले तो माँ बाप की मर्जी होती थी, अब माँ की अलग, बाप की अलग, बच्चों की अलग, चूज बॉयज, कितने रोग हैं। इस पे बहुत डिटेल से हमने बात की भी अपने क्लास के दौरान कि रिश्तों को मुश्किल ना बनाए, बाज दफा कारोबार, बाज दफा जॉब, बाज दफा ब्यूटी, बाज दफा घर और बच्चों के जज्बात को चलते हैं। मैं कहती आज जो दुनिया का माहौल है वैस का, यहाँ तो इधर जज्बे पैदा हो फौरन शादी करें। आप भूखे हैं और आपको भूख लगी भी है, आप बार बार जाके देखेंगे ना क्या पका हुआ है, हंडिया में क्या, फ्रिज में क्या, चूल्हे में क्या, एक दफा बिठा के खिला दें तो कभी पूछता भी कोई नहीं। इससे पहले कि ख्वाहिश उभरे बच्चों के लिए तैयारी करें, और यकीन करें आज वो वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल प्यूबर्टी के फौरन बाद बच्चों के रिश्ते देखना शुरू करते हैं। ना कर सके, अब सवाल है कि अब चाहते तो है तो करना है, होता ही नहीं, ये भी होता, हर जगह तो नहीं चाहता कि बंदा जो चाहे वो, तो कबल जस्ता फिल लजी नला यजी तो ना निकाह, अब निकाह नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं आ रहा, या बच्ची नहीं मिल रही, क्या करें। जो निकाह का मौका ना पाए तो उनको इफ्फत माँ भी इख्तियार करना चाहिए, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से इनको गनी करे। ये कह फिर वो गंदी चीजें ना देखो, फिर वो मैरिड दोस्तों के साथ ना बैठो, फिर फिल्में ना देखो, ऐसे गाने ना सुनो जिससे जज्बात उभरे। और अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारा तरीका बताया कि रोजे रखो, कसरत से वो लोग रोजे रखें जिनकी शादी नहीं होती, क्योंकि रोजा जज्बात को ठंडा कर देता है। तो ये भी एक मौके की बात है, अपना दिल कुरान से लगा लें, नमाज में, इबादत में लगाएं। हजरत मरियम ने किस चीज में अपना दिल लगाया था, तो लिहाजा फिर ऐसी तमाम चीजें, ऐसी महफिलें, ऐसी पार्टियां छोड़ दें जहां जाकर फिर आपका दिल खराब होता है और आपके दिल में ऐसे जज्बात आते हैं। अब उससे अगली वजह क्या है जिना को रोकने की, कि जो गुलाम गुलामी से निकलना चाहते हैं, लौंडी लौंडी नहीं रहना चाहती, तो उनको मुकातबत के जरिए से आजाद कर दो। ये आजकल है नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे इधर। और तुम्हारे ममलूकों में जो मुकातबत की दरख्वास्त करें इनसे मुकातबत कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि इनके अंदर भलाई है, और इनको इस माल में से दो जो अल्लाह ने तुमको दिया। अगली रीजन जिना की कहवागरी, और वो क्या होती, प्रोस्टिट्यूशन। यहां भी समझ लीजिए अब्दुल्ला बिन उबई का बिजनेस क्या था, यहां नोट कीजिएगा, दिल में निफाक का बात है जब बिजनेस में हराम होता है। वो प्रोस्टिट्यूशन कराता था, लौंडियां ले आता खूबसूरत सी, फिर उनको मर्दों को देता, उनके पैसे खाता था, उसी का अल्लाह ने आप जिक्र किया। और अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फायदों की खातर जिस्म फरोशी पर मजबूर ना करो, जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहती हैं, और जो कोई इनको मजबूर करे तो इस जबर के बाद अल्लाह इनके लिए गफूर रहीम है। यह आखिरी सब बड़ा प्यारा है, तो वाइफों को भी अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहा है कि अगर तुम किसी हालात की मजबूरी में किसी कोठे पे बिठा दी गई हो, किसी मर्द के हाथों में आ गई हो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। देखिए आज देखिए ऐसी औरतों को माशरे में कोई इज्जत नहीं मिलती, लेकिन जो लोग इनको देखते हैं, जो इनके पास जाते हैं, वो तो शहर के बड़े लोग होते हैं। कितना बड़ा जुल्म है कि ऐसी औरत को तब तवाइफ कह के पीछे कर दें, किसी चीज में उसको ना लाएं, लेकिन जो लोग इनसे गुनाह करें और इनका माल कमाएं वो शहर के बड़े रईस और मालदार लोग हैं, जो अपनी खुशियों के मौकों पर इनको नचाएं, तो ये भी जुल्म है। कोई औरत अपनी तबीयत के एतबार से अपने शौहर के अलावा किसी मर्द के साथ ताल्लुक नहीं चाहती, ये तो माहौल और सोच बदली और पॉवर्टी सोसाइटीज हैं, तो ये बातें आपको दिखेंगी इक्का दुक्का ऐसी। अदरवाइज आप देखिए कि कोई औरत नहीं पसंद करती, अपने मर्द के साथ भी अल्लाह ही दिल में डाल देता है, तो वरना कोई औरत अपनी तबीयत से इस चीज को पसंद ही नहीं करती। तो वो औरतें आज मजबूर हैं, मजलूम हैं, जिनके साथ ये काम किया जा रहा है, उन तक अल्लाह का दीन पहुंचाने की जरूरत है। हमने साफ साफ हिदायत देने वाली आयात तुम्हारे पास भेज दी हैं, और इन कौमों की इबरतनाक मसाले भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वो नसीहतें हमने कर दी जो डरने वालों के लिए होती हैं। है हर चीज क्लियर? कोई कह सकता है नहीं पता, अल्लाह ने ये छोड़ा नहीं, वो नहीं बताया, तो अब क्या करो? अब ये सब कब आएगा? जब दिल में अल्लाह का नूर आएगा। इसकी आयत नूर बड़ी प्यारी ना आयत है इस बारे की, अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, कायनात में इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हो और चिराग एक फानूस में हो, और फानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वो चिराग जैतून के कैसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो, जो ना मशरकी हो ना मगरबी, जिसका तेल आप यहाँ भड़कता पड़ता हो चाहे आग इसको लगे या ना लगे, इसी तरह नूर हो नला नूर, रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है, वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है, और वो हर चीज से खूब वाकिफ है। इसके नूर की तरह हिदायत पाने वाले इन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने को और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। इनमें ऐसे लोग हैं सुबह शाम जो उसकी तस्बीह करते हैं, जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और इकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं करती। अल्लाह का नूर, यहाँ बात हुई, ये क्या है? ईमान का नूर है। जितना दिल में ईमान इस्लाम आएगा उतनी अल्लाह की से मोहब्बत होगी। आप इन आयतों की तफसीर भी सुन सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयत है कि जिसमें कैसे दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत आती है तो ऐसा बंदा ईमान से भरता है, और उसका फिर अमली रवैया क्या है कि वो फिर मस्जिदों में पाया जाता है, और मस्जिदों में ऐसे लोग हैं जिनको तिजारत नहीं रोकती। आज भी रिस्क के हलाल कमाने वाले इस बात की गवाही देंगे कि हम फर्ज नमाज के वक्त मस्जिद के बगैर नमाज पढ़ ही नहीं सकते। इसके बावजूद अल्लाह ने इतना रिस्क उनको दिया कि समेटे नहीं सिमटती। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन 5 वक्त के नमाजी थे। तो किसी ने उनसे पूछा था कि आपके से इतनी दौलत कैसे है, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने अपने असूल जो बनाया उसमें एक असूल लिया कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो मैं मस्जिद में आऊंगा। तो फिर उनको अल्लाह ने रिस्क दिया ना। आज आप जुमा छोड़ दें और आप कहते हैं जॉब नहीं छुट्टी दे रही, तो जिस मर्द ने जुमे की नमाज छोड़ के कमाया, उस कमाने के बाद ना तो वहां बरकत है और ना ही अल्लाह के कामों को मानने की तौफीक है। तो रिस्क हलाल अल्लाह के रास्ते में रुकावट नहीं बनता अगर हम उसको अल्लाह ताला के हुक्म से लेते हैं। तो अल्लाह कहते हैं अगर अभी भी खौफ नहीं आया तो क्यामत का दिन याद करो, और वो कौन सा दिन है? या खाफूना यौमा ततकल्लबु फीहि अल-क़ुलूबु वल-अबसार, वो इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल उलटने और दीदे फिरा जाने की नौबत आ जाएगी, और वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनको बेहतरीन आमाल की सजा दे और मजीद अपने फजल से नवाजे। और बात यह है कि तुम्हारे इससे रिस्क नहीं बढ़ेगा, बल्कि वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता है। रिस्क अल्लाह ने देना है, अल्लाह को नाराज करेंगे तो भी, राजी करेंगे तो भी। ये नूर की मिसाल थी, अब अगली आयतों में कुफर की मिसाल है जो अंधेरे हैं। वल्लज़ीना कफरू अमालहुम कसराब, इसके बरक्स जिन्होंने कुफर किए इनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सहरा में बगैर पानी के सराब हो। मिराज की मिसाल है, दूर से धूप में चमकता हुआ पानी दिखता है, प्यासे इसको पानी समझे मगर जब वो पास पहुंचा तो कुछ ना पाया, बल्कि इसने वहां अल्लाह को मौजूद पाया जिसने इसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया, और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई, फिर इस पर एक और मौज, और इसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है, आदमी अपना हाथ निकाल ले तो भी उसे ना देख पाए, और जिसे अल्लाह ही नूर ना बख्शे इसके लिए फिर कोई नूर नहीं है। काफिर का दिल अंधेरों की माज गए, उसके अंदर डिप्रेशन है, खौफ है, गम है, तोहम परस्ती है, और इसी गम को दूर करने के लिए कभी शराब से काम लेता है तो कभी जिना से काम लेता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें दुनिया के अंधेरों को दूर करने की तौफीक दे। अब अगली आयतों में टीम वर्क है। मैंने और आपने नियत की है कि दुनिया में इस्लाम का नूर फैलाना है, कुरान के नूर को आम करना है, तो उसका अल्लाह कहते हैं तरीका बादलों से और परिंदों से सीख लो। कैसे? अलम तरअन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्वीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब कुछ जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर रहता है। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह के लिए है, और इसी की तरफ सबको पलटना है। जानवरों को, परिंदों को पता है, तो इंसान को क्यों नहीं पता? अब आप चाहते हैं कि आप इंसानियत पे रहमत की बारिश बने, कितने लोग चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब चाहते हैं ना कि इस पूरी दुनिया पे आपको अपने लोगों से ज्यादा गैर मुस्लिमों पे प्यार आना चाहिए और उनके लिए रहमत है। तो तरीका क्या होगा, अब कैसे हम दीन का काम करें? आपको हिंट मिलेंगे इस आयत में, अलम तरअन्नल्लाह युस्जी सहाबा, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता आता है, फिर इसकी टुकड़ियों को बाहम जोड़ता है, फिर इसे समेट कर एक गहरा बादल बना देता है, फिर तुम देखते हो कि इसके खौल में से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं, और वो आसमान से इन पहाड़ों की बदौलत जो इसमें बुलंद है ओले बरसाता है, फिर जिसे चाहता है इनका नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है इनसे बचा लेता है। इसकी बिजली की चमक आंखों को हीरा किए देती है, रात और दिन का उलटफेर वही कर रहा है, और इसमें एक सबक है आंखों वालों के लिए। और अल्लाह ने हर जानदार को एक तरह के पानी से पैदा किया। ये बादलों के बनने का अमल कैसे है? आप देखिए कि दीन का काम एक बारिश, यानी जैसे आसमानी बारिश है ना, इस तरह ये वही की बारिश है जो इस वक्त हमारे दिलों पे पड़ती है। ये इतने आराम से हम तक नहीं पहुंचती, एक इंसान कई मरहलों से गुजरता है। आप देखिए कि इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, किसी भी स्कूल या इदारे या किसी भी, मतलब आप मदरसे से सोचिए, कई उस्ताद होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कोई कहीं से पढ़ता है, कहीं कई घाट का पानी पीता है इंसान, उससे सीख, उससे सीख, इससे सीख, उसके साथ, फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर लाइक माइंडेड लोग हैं, फिर वो अपनी स्किल्स लेकर आते हैं, वो कहता है मुझे पढ़ाना आता है, वो कहता है मुझे बोलना आता है, वो कहता है मुझे मैनेजमेंट आती, कोई कुछ, वो सब छोटी छोटी बदलियों की तरह जमा होते हैं। जब सब जमा होते हैं एक ऐसी जगह पे अल्लाह उनको पहुंचाता है जहां बारिश की जरूरत होती है, फिर वो वहां जमा होते हैं, फिर वहां के लोगों को खैर देते हैं, फिर वहां लोगों के अंदर कुरान की रोशनी फैलती है, फायदा होता है, फिर अल्लाह वहां से उठाता है बादलों को कहीं और लेता है। आज उम्मत मुस्लिमा को ये बादलों वाली मिसाल बनना है। बहुत देर से हम सुनते आए ये बात कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास आता है, मान लेते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने कुएं नहीं बनना, क्योंकि प्यासे खुद नहीं आते, पानी पीने तो आ जाएंगे, इल्म का पानी नहीं पीते। मुझे और आपको लोगों तक पहुंचना है। कल एक ब्रदर मुस्लिम हुए, उनकी पिक्चर्स मैंने कहीं देखी, तो जो ब्रदर्स के चेहरों पे खुशी उनको देखकर, मैं सोच रही थी ये है सच्ची खुशी। कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा था कि आपकी वजह से अल्लाह ताला किसी को अगर एक हिदायत दे देगा तो फिर वो आपके हक में सुर्ख ऊंटों के मिलने से बेहतर है। तो आप और मैं भी नियत करते हैं, क्या हमारी ये धरतियां प्यासी हैं? क्या जरूरत है? तो हर एक अपनी स्किल्स लेकर आए, जो जितनी अपनी स्किल्स अल्लाह के रास्ते में लाता है अल्लाह उतनी खैर ले आता है। और मैंने देखा है कि आप तन्हा चलते हैं और लोग मिलते जाते हैं और काफिला बन जाता है। एक वो वक्त था कि तन्हा थे हम जमाने में, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। और आप दीन के काम के लिए खुद अपने आप को पेश कर दें और अल्लाह पे नजरें लगा लें, खुद ब खुद लोग आएंगे। जैसे साहबे कहाब को अल्लाह ने जोड़ दिया था ना, इधर उधर से आके सब एक जगह जमा हो गए। मेरा ईमान है जब भी कहीं अल्लाह ने काम लेना होता है, वो लोग जिनके बारे में वहमो गुमान में भी नहीं होता, वो लोग आते हैं और आपके हेल्पर बन जाते हैं। तो ये मेरा और आपका काम है, हम अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई गुण है, कोई खूबी है, उसको इंसानियत के लिए रहमत उसका जरिया बना दे। फिर जानवरों की कुछ बातें, फमिनहु मन यमशी अला बतनिही वमिनहु मन यमशी अला रिजलैन, कोई पेट के बल चलता है, बोले कौन? सासत बोलिए, सांप। और कोई दो टांगों पर चलता है, कौन? और कोई चार टांगों पर चलता है, और कोई ऐसा भी जो इन सब पे चलता है? इंसान। बच्चा शुरू में पेट पे क्रॉल करता है, फिर चार टांगों से टुप 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 चलता है, फिर दो पे चलता है। अल्लाह ने इंसान को सारी तरह से चलना सिखा दिया, और क्यामत के दिन अल्लाह माथों के बल चलाएगा। आपको पता, पूछा अल्लाह के नबी, लोग माथे से कैसे चलेंगे? कहा जिसने टांगों पे चलना सिखाया वो माथे पे चलना भी सिखा देगा। अल्लाह हमें उस दिन की रुसवाई से बचाए। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी है, आगे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है। ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, पूरी सूरत में अल्लाह ने फर्ज चीजें हमें बताई। अब इताते रसूल का हुसन बताया गया कि जब तक अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानोगे तब तक तुम्हें बात समझ नहीं आएगी। तो दुआ करते हैं कि इतना कुछ सुनने के बाद हमें अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलने की तौफीक हो। ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, हमने इताअत कबूल की, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह इताअत से मुंह मोड़ जाता है, ऐसे लोग हरगिज़ मोमिन नहीं। जब इनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि रसूल इनके आपस के मुकदमे का फैसला करे, तो इनमें से एक फरीक कतरा जाता है। कुछ लोग अवॉइड करते हैं रसूल को, क्यों? रसूल की बात सुनी, सुन्नत मसला पता लग गया तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, ये एटीट्यूड है उनका। अलबत्त अगर हक इनकी मवाफकत में हो तो रसूल के पास बड़े इताअत कैश बनकर आ जाते हैं, यानी कोई हदीस अपने हक में मिलती तो हो सबको जाके सुनाएंगे, देखो अल्लाह के नबी की यह हदीस है। क्या इनके दिलों को मुनाफकत का रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेगा? तीन डाउट्स हैं इसमें, हाईलाइट करें, आज भी मुसलमानों के ये डाउट्स हैं। कितनी अल्लाह और उसका रसूल दीन को सख्त कर देगा, या फिर शक है, या फिर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इन तरीकों पे चलेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो इंजॉइंग नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं असल बात यह कि जालिम तो ये लोग खुद हैं। ईमान लाने वालों का काम क्या है? ये आयत 51 को हाईलाइट करें और इसके नीचे मोमिनीन के नीचे अपना नाम लिख लें और दुआ करें कि अल्लाह मेरा ये कॉल बन जाए। क्या इन्नम काना कौलुल मोमिनीन, सिवाय इसके नहीं है कॉल ईमान वालों का कि जब कभी उनको पुकारा जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि रसूल इनके मुकदमे का फैसला करें, तो वो कहते हैं समेना व अतौना, हमने सुना और हम मानेंगे। दुआ करिए अल्लाह हमें भी इसी की तौफीक दे। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं और कामयाब वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करें और अल्लाह से डरें और इसकी नाफरमानी से बचें। इसके बरक्स मुनाफिकों की सिफात वक्समु बिल्लाहि जख्दा ईमानिहिम, ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हो, यानी आप बात करके तो देखें, आप कह के देखें, हम तो आपके लिए जान भी दे देंगे। इनसे कहो कस्में ना खाओ, तुम्हारी इताअत का हाल मालूम है, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। कहो अल्लाह के मती बनो और रसूल के ताबे फरमान बन के रहो, लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम पर जिस फर्ज का बोझ डाला गया इसके जिम्मेदार तुम हो। हाईलाइट करें, हम जल्दी में गौर करना नहीं छोड़ेंगे इस आयत पे। अल्लाह कह रहे रसूल को जो बोझ दिया था, काम दिया था, वो कर गए माशाल्लाह, शहादत हक की गवाहियां दे गए। उम्मत मुस्लिमा तुम तैयार हो अल्लाह को जवाब देने के लिए कि जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी उसको अदा किया कि नहीं? हाँ वही तो तीयूह तहतदू, तो अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पा लोगे, नहीं करते तो वमाल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, तो रसूल के जिम्मे साफ साफ हुक्म पहुंचाने के सिवा कुछ भी नहीं। अब आयत 55, मेरे और आपके खूबसूरत रोशन मुस्तकबिल की जमानत, बहुत खूबसूरत आयत है। इस आयत की रोशनी में पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा जब सही मुसलमान बन जाएगी उसका मुस्तकबिल कितना रोशन है, क्योंकि अल्लाह ने वादे का लफ्ज इस्तेमाल किया। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से इन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल करें कि वो इनको इसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका, और उनके लिए उनके दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम करेगा जिसे अल्लाह ने इनके हक में पसंद किया, और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। हाईलाइट करें, आज है मुसलमान स्केर्ड, अल्लाह कहता है तुम ईमान के तकाजे पूरे करो तुम्हारा सब स्केरीनेस खत्म, तुम्हारा रूब आ जाएगा बजाय इसके कि तुम मरूब हो, और अल्लाह वो वक्त जल्दी ला कि हम मुसलमानों के दिलों से खौफ निकल जाए, बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें, नुस्खा भी मिल गया। और जो इसके बाद कुफर करे तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। नमाज कायम करो, जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पे रहम किया जाएगा। जो लोग कुफर करें इनके मतलब इस गलत फहमी में ना रहो कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज कर देंगे, इनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह मलाता चलना मिन हो, पीछे हुक्म गुजर चुका कि किस तरह घरों में रहते हुए एक दूसरे से इजाजत लो, अब बिल्कुल क्लोज सर्किट में बच्चे माँ बाप के कमरे में किस वक्त आ सकते हैं किस वक्त नहीं आ सकते, इजाजत ली जाएगी नहीं ली जाएगी, यही बात अब आगे सिखाई जा रही है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो भी अकल की हद तक नहीं पहुंचे तीन औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। कौन से? हाईलाइट कर लीजिए, सुबह की नमाज से पहले, आमतौर पर प्राइवेसी का वक्त होता है, इंसान अपने आप को पाक कर रहा होता है, नमाज की तैयारी में होता है, और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी घर में कैलूला करते हो, ऊपर के कपड़े चादरें अबाए बाज मर्ज कमीज उतार देते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर घर में कमरे में कोई आ जाए तो एम्बेरसमेंट होगी। और तीसरा वक्त ईशा की नमाज के बाद, ये तीन वक्त हैं तुम्हारे लिए पर्दे के, इसके बाद वो बिला इजाजत आए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं ना उन पर। तो बच्चों को शुरू से ये ट्रेन कीजिए, छोटे बच्चों को कभी इजाजत ना दें कि बगैर नॉक किए आपके कमरे में आ जाएं, चाहे वो मस्जिदों के डोर हो। इतनी आदत हो जाए कि जहां डोर बंद है नॉक करके इजाजत लेकर फिर अंदर आए। फरमाया तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने इरशादात को वाजे करता है, वालीम है और हकीम है। और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुंच जाएं तो चाहिए कि इसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तो अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम और हकीम है। अब बूढ़ी औरतों की बात है, हम में से तो कोई बूढ़ा नहीं है ना माशाल्लाह। फरमाया वल कवायद मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहा, और वो औरतें जो जवानी से गुजरी बैठी हो, निकाह की उम्मीदवार ना हो, अगर वो अपनी चादरें उतार कर रख दें तो इन पर कोई गुनाह नहीं। कौन उतारेगी बुढ़ापे में जो जवानी में लेती थी? आप देखिए साइमल्टेनियसली इसमें पता चल रहा है कि जवानी में लो, और ये कौन सी चादर है जिसका जिक्र हम सूरत अलअहज़ाब में पढ़ेंगे, जिलबाब, और उसी को आप डिफरेंट नामों से सोचते हैं। तो कहा अगर बुढ़ापे में संभाल नहीं सक रही, कंधों में दर्द है, अब कमजोरियां आ गई, कशिश नहीं है ना उनमें ना किसी में, तो कोई हर्ज नहीं वो मोटी चादरें उतार दे, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ये ना हो कि आप मैचिंग कर तो रही हैं, बस ऑफ व्हाइट कलर की कर रही हैं। आप जोड़े तो बन रहे अच्छे से अच्छे, लेकिन व्हाइट कलर के काम वाले जोड़े बन रहे हैं। अभी बेचारी से सुरमा लग नहीं रहा, लेकिन वो लगाने की कोशिशों में दंदासा है कुछ भी। अब तक अपने ब्यूटी कॉन्शियस छुपना चाहिए। अब जिसको देख जी अब्बा उतार दे तो कोई हरज की बात नहीं। यदि जो औरत आराइश से बेनियाज है वो ठीक है, और जो बेटियां खुद अपनी जो बूढ़ी औरतें अपनी बेटियों को मशवरे दें कि दुपट्टे उतार दो और ये कर लो और वो कर लो, फिर उसको इससे एग्जाम किया गया। हाँ मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कहा ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो इनके हक में बेहतर है। एक आलिम थे तो उन्होंने देखे बूढ़ी औरत और खूब मोटे वो जो पहले दौर के चादरें दुपट्टे होते थे ना बुरके सफेद वो पहनी हुई थी, तो उन्होंने उनको देखकर ये आयत पढ़ी कि अम्मा आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि वल कवायद मिन निसा इल्लाति ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदान सियाबहुन गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। इतनी आयत पढ़ी कि देखे अल्लाह ने इजाजत जो दी है तो आप क्यों इतना पहन रही। तो कहने लगी बेटा तुमने आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ा, वहीं यस्ताफिफ़ना खैरुल्लहुन्ना, बूढ़ी औरत भी बच जाए बेपर्दगी से तो ये भी उनके हक में बेहतर है। तो ये तो फिर अपने तकवे की बात होगी ना। फिर आगे खाने पीने की कुछ बातें, लैसा अलल आमा हरज अलल आरजी हरज, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, कोई हरज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से और अपनी खालाओं के घरों से। इन सब के ऊपर एक एक्टिविटी लिखें कि सारे रिश्ते अरबी में याद करें, ठीक है? मामू को क्या कहते हैं, फूफो को क्या कहते हैं, खाला को, और अल्लाह पे प्यार आता है कि आप सब के घर से खा सकते हैं, वो तो खुद खुश होते हैं आप उनके घरों से खाएं, अल्लाह सुब्हान तआला भी खुश होता है जब आप अपने इन रिश्तों के घरों से खाते हैं, या उन घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारी सुपुर्दगी में हो, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम सब मिलकर खाओ या अलग अलग। कौन सब मिलकर? लोगों ने इसे आपको कहता है कि सेग्रीगेशन का रद्द कर दिया। देखो कुरान कहता है सब मिलकर खाओ, यानी सारी औरतें मर्द मिलकर एक ही जगह खाओ, है ना मत मरी भी उल्टी बात। यानी सब मिलकर खाओ से मुराद क्या है कि तुम मिलकर खाओ। पहले दौर में क्या होता था कि जो बेचारे हैंडीकैप्ड लोग होते थे वो दूसरों के साथ नहीं खाते थे, कहते थे हम अंधे हैं पता नहीं हम ज्यादा खा लेंगे दूसरे का हक मार देंगे, कोई कुछ कोई कैच कहता। अल्लाह कहते नहीं सब खाओ, मिलके भी खाओ, कभी इकट्ठे खाओ कभी अलग खाओ, अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो, दुआ खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई है, बड़ी बाबरकत और पाकीजा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम समझ बूझ से काम लो। बार बार अल्लाह का यही मशवरा है कि अक्ल से काम लो, समझ लो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है तुम क्या करते हो। आखिर में सच्चे मोमिनों की तारीफ कर दी, कौन होते हैं मोमिन, और अल्लाह मुझे आपको बना ले। और इसमें इस समय जिंदगी है लिख लें, इसका थोड़ा सा हिंट दूंगी क्योंकि बहुत अहम आयत है। और जो लोग कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, कहीं वॉलंटियर करते हैं, वो इस आयत की तफसीर जरूर सुने कि जब दीन के कामों पे हम मिलें या जुदा हों तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिन, मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने, और जब किसी इज्तमाही काम के मौके पर रसूल के साथ हो तो इसे इजाजत लिए बगैर ना जाओ। नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि इन्फॉर्म करके जो हम जा रहे हैं खुदा हाफिज, नहीं, यू नीड टू टेक द परमिशन। किसी को प्रोग्राम इंचार्ज बनाया, आपने उससे इजाजत लिए बगैर चले गए तो आप इस आयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, बस जब वो अपने किसी काम से इजाजत मांगे जिसे तुम चाहो इजाजत दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआ मगफरत किया करो, अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझो, यानी रसूल की इज्जत करो। ऐसे ही उनके साथ बात ना करो कैजुअल मूड में जैसे दूसरों से करते हो, और रसूल तुमको बुलाए तो तुम उनकी बात सुनो। अल्लाह इन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं जो एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सिटक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। अल्लाह हम बचाए। इस आयत को हाईलाइट किया आपने, कितनी जबरदस्त आयत है। सुन्नतों से मुंह फेरने वालों को अल्लाह अजाब से डरा रहा है। और आखिरी आयत, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, खबरदार रहो आसमानों जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, तुम जिस रविश पर भी हो, अल्लाह इसको जानता है। 3 सेकंड गौर करें, तुम जिस रविश पर, पूरी सूरत के अहकाम को जहन में लाएं, जिस बात पे, जिस हद तक जो अमल कर रहे हो अल्लाह को उसकी खबर है। याद रखो, यौम युरजाउन इलैहि फयुनब्बियुहुम बिमा अमिलू, जिस रोज उसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो इनको बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का इल्म रखता है। तो माशरे को जज नहीं बनाओ, अल्लाह को जज बनाओ, वो तुम्हारे कामों को जानता है। तो ये थी सूरत नूर, जिसमें हकीकत में हमारे लिए बहुत कुछ है। पिछली सूरत नूर है तो अगली सूरत फुरकान है, दोनों मिलती जुलती सूरतें। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। ये सवाल आया एक अदा ऑनलाइन से, घर में अंदर का पर्दा क्या है? घर के अंदर का पर्दा बाहया लिबास है, ठीक है। हाँ, घर में अगर गैर महरम रहते हैं तो उनसे वही लाइबिलिटीज हैं जो के बाहर की हैं, थोड़ा आप सेटअप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, बाहर आप जाते हैं फुल अबाया पहनते हैं, स्काफ और हिजाब और निकाब जो भी आप करते हैं, बाहर ऐसा होता है। अब घर में अगर आप रहते हैं, मिसाल है देवर जेठ है या जिसको आप कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो फिर आप घर में अगर नकाब पहनेंगे तो काम नहीं होगा, या बाया पहनेंगे बस, जब उसमें और भी ज्यादा जिस्म से लगता है, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि खुली बड़ी बड़ी चादरें मोटी सी ले ले और घर में ढीली ढाली वो चादरें ले। मर्दों को खुद पता है कि हमारे घर में जो सिस्टर्स हैं वो पर्दा करती हैं। मर्द बाहर से कमरे में आ रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके देवर जेठ जो भी आ रहे हैं, वो एक दफा आवाज लगा दें, सलाम कर लें, फौरन आप अब चेहरे को, अब जैसे ये कपड़ा, अब अगर आप मुझे कहें कि इसकी जगह मैं निकाब पहन लूं तो मेरा लिए निकाब में ज्यादा एक्सपोज होगा। अब ये दुपट्टा, अब मेरी चादर है, इसको आप बड़ी चादर प्लेन कर लें। तो मैंने इस तरह ली, मैं किचन में काम कर रही थी, कोई गैर महरम जो घर में रहते हैं या जहां मैं रहती हूँ वो आ गए तो वो आवाज लगाएंगे, मैं फौरन इसको यूं कर लूंगी। अब वो आके मेरे साथ यूं तो नहीं आके देखेंगे। याद रखिए, जो औरतें हयात से पर्दा करती हैं उनके मर्दों में बहुत गैरत आ जाती है। कभी आपको निकाब लेना ही नहीं पड़ता, मेरा पूरा ईमान है। हमारे घरों में माशाल्लाह हमने देखा, भाइयों को, भाभियों को देखा, साथ रहते देखा, खाते देखा, पीते देखा, कुछ मसला नहीं होता। आप घर में हवा ना बनाए पर्दे को, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स सो इजी। सिर्फ लिमिट्स मुकर्रर कर, मर्द आते वक्त इजाजत ले, और जब आप खाना खाने बैठे आमने सामने ना बैठे, मीटिंग में बैठे बिल्कुल आमने सामने ना बैठे, साइड पे बैठे, एक्सपोज ना करें, जितना भी अलग हो सके। बाकी बात करना चाहें बात कर सकते हैं, खाना पूछ सकते हैं। इस्लाम को इस तरह का मजहब नहीं है कि आपको बद तहजीब और बदतमीज बनाता है। जिस हद तक बच सकते हैं बच्चे, फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर उसमें जब आप शुरू करते हैं तो आसानियां भी कर देते हैं। ये लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि घर के अंदर बाल छुपाए हों और सिर्फ चेहरा ही खुला जाए, नजर आए, ऐसी कोई बात मैंने तो कभी नहीं पढ़ी कि औरतें यानी अकेले में भी है तो बाल ना खोलें, या अगर घर में सिर्फ आप औरतें हैं तो आप दुपट्टा ना खोलें, ऐसी कोई बात नहीं देखी गई। और आपके सामने कुरान खुला हुआ है, अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह ताला आयत का एक हिस्सा डाल देते कि कोई औरत अपने बाल भी दूसरी औरतों को ना दिखाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आज के लिए इतना काफी है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सूरत का खात्मा है।